पृष्ठ संख्या 84। सन 1874 के आरंभ में सरकार की कोरिया संबंधी नीति पर मतभेद होने के कारण अधिकारियों के एक वर्ग ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिए और नौकरशाही व्यवस्था की उच्च अधिकारियों ने मनमाने कार्यों के विरुद्ध एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करके अपना विरोध प्रकट किया और जनमत द्वारा निर्वाचित विधानसभा की स्थापना का समर्थन किया। सरकार इन भूतपूर्व अधिकारियों को इन आशा से रियायतें देने को तैयार थी कि इससे उनका समर्थन प्राप्त किया जा सकेगा और उनकी और अधिक मांगों को रोका जा सकेगा। फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच एक समझौता हुआ जिससे दोनों दलों में मैत्री स्थापित हो गई और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तनों ने के लिए सरकार राजी हो गई जिन्हें प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की दिशा में एक छोटा कदम कहा जा सकता है। तभी विधानमंडल के रूप में सीनेट की स्थापना की गई। इससे मामलों पर विचार करने का अधिकार तो था, लेकिन उन्हें कार्यान्वित करने का अधिकार न था। इसमें केवल अभिजात वर्ग तथा अधिकारी वर्ग में से नियुक्त सदस्य ही सम्मिलित थे। इसी समय विभागों के पुनर्गठन का कार्य भी हुआ जिसमें उच्च न्यायालय की स्थापना का कार्य भी सम्मिलित था। इन सब का उद्देश्य सरकार के तीनों अंगों न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधानमंडल में अंतर को बनाए रखना था। कार्यों के विभाजन के सिद्धांत से ही प्रभावित होकर ऐसा किया गया था। इन सिद्धांतों ने पश्चिमी राष्ट्रों के संविधान को भी अत्यधिक प्रभावित किया। इसके साथ साथ टोक्यो अधिकारियों को जनता की आवश्यकताओं से परिचित कराने के लिए प्रशासकीय क्षेत्रों के गवर्नरों के सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन इन परिवर्तनों में न तो सार्वजनिक मतदान की व्यवस्था थी और न ही अधिकारी वर्ग को छोड़कर अन्य किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था थी। इनका एकमात्र प्रयोजन सम्राट के निकटवर्ती वर्ग के लोगों के निरंकुश अधिकारों को नियंत्रित करना था। अभी जापान संभवतः अधिक रियायतों का लाभ उठाने के लिए उद्यत न था। सन 1874 में जिन परिवर्तनों का आश्वासन दिया गया था उनसे उदार वर्ग के लोगों को अस्थायी रूप से संतुष्ट करने की आशा नहीं की जा सकती थी। इस दृष्टि से सीनेट तथा गवर्नरों की सभा दोनों में से कोई भी अधिकार कारगर सिद्ध न हुई, और चूंकि ये दोनों ही केवल अधिकारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे इसलिए इन पर सहज ही मंत्रिमंडल का नियंत्रण हो गया। 1877 तक एक बार फिर संविधान के लिए आंदोलन हुआ। इस बार यह पहले ही अधिक उग्र था और केवल उदार वर्ग तथा असंतुष्ट शासक वर्ग के सदस्यों तक ही सीमित न रहा। पश्चिम के प्रजातंत्र से निरंतर संपर्क के कारण आमूल परिवर्तनवादी विचार जापान में फैल रहे थे। फलस्वरूप अनेक राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ जिन्होंने प्रतिनिधि संस्थाओं के निर्माण का समर्थन किया और जनता को प्रशिक्षित तथा उद्बोधित करने के लिए प्रचारकों एवं आंदोलनकारी व्यक्तियों को भेजा। धीरे धीरे इस आंदोलन में तेजी आ गई और 1878 में एक प्रमुख मंत्री की हत्या के कारण सरकार को कुछ झुकना पड़ा और उसने स्थानीय विधानसभाओं के संगठन की घोषणा की। ये सभाएं परिसीमित मतदान द्वारा निर्वाचित होती थी। प्रत्येक प्रशासकीय क्षेत्र में एक ऐसी सभा होती थी जिसका कार्य गवर्नरों को परामर्श मात्र देना होता था। वे प्रत्येक वर्ष एक मास के लिए एकत्र होते थे तथा मुख्य रूप से स्थानीय करों के निर्धारण एवं उनके व्यय तथा लेखों के परिवीक्षण के संबंध में विचार विमर्श करते थे। वे केंद्रीय सरकार से भी याचना कर सकते थे। कुल मिलाकर इन सभाओं का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। कालांतर 1880 में इसी प्रकार की सभाओं का नगरों, कस्बों और गांवों में भी संगठन किया गया। कभी-कभी उनका केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों से मतभेद हो जाता था, परंतु उन्होंने स्थानीय आर्थिक मामलों में जनता की आवाज को महत्व प्रदान करने तथा राष्ट्रीय संसद के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण योग दिया। इन स्थानीय सभाओं की स्थापना से भी उदार वर्ग के लोगों की तुष्टि न हुई, उनकी मांगों में निरंतर वृद्धि ही होती रही, क्योंकि एक तो अभी तक किसी राष्ट्रीय संसद की व्यवस्था नहीं की गई थी और दूसरे पश्चिमी देशों के लोगों के साथ निरंतर संसर्ग के कारण पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का देश में प्रसार होता जा रहा था। विभिन्न दलों की ओर से सरकार के सामने राष्ट्रीय संसद की स्थापना की मांग के अभ्यावेदन पेश किए गए। उदार वर्गों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने प्रदर्शन द्वारा अपनी मांगे पेश की। इस आंदोलन का कई नव स्थापित समाचार पत्रों ने समर्थन किया। अंततोगत्वा सन 1881 में सरकार को झुकना पड़ा और राजा की ओर से प्रशासन ने वचन दिया कि 1890 में एक राष्ट्रीय विधानसभा संगठित की जाएगी और देश के लिए संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसके अगले ही वर्ष पश्चिमी देशों में प्रचलित संविधानों का अध्ययन करने के लिए ईतो को विदेश भेजा गया। विदेश से वापस आने पर उसकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य जापान के लिए पश्चिमी देशों के ही समान एक संविधान बनाना था। ईतो के बारे में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वह 19वीं शताब्दी की अंतिम दो दशाब्दियों में जापान का सबसे प्रमुख राजमर्मज्ञ था। उसने अपने जीवन का आरंभ चूसू के समुराई के रूप में किया। शुरू में वह अपने सामंत के ही समान विदेशियों का विरोधी था, परंतु उसे शीघ्र ही पश्चिमी ढंग पर जापान के सुधार की आवश्यकता पर विश्वास हो गया और उस राजादेश का उल्लंघन कर जिसमें विदेश गमन भयंकर अपराध घोषित किया गया था, वह इनोउए तथा अन्य 3 व्यक्तियों के साथ 1863 में गुप्त रूप से शंघाई पहुंचा। पृष्ठ संख्या 86। वहां से ईतो तथा इनोउए ने अपने इन साथियों के साथ जहाज द्वारा लंदन के लिए प्रस्थान किया। इन दोनों ने लंदन में 2 वर्ष विद्याध्ययन में बिताए। जब चोसू में विदेशियों के संबंध में कुछ गड़बड़ शुरू हुई, तो ईतो शीघ्र ही अपने जागीर के विदेशी विरोधी रुख को रोकने के लिए जापान लौट आया। वह अपने प्रयास में सफल न हो सका और कुछ समय के लिए स्वयं उसके ही जीवन को खतरा पैदा हो गया। जापान में सम्राट के अधिकारों की पुनः स्थापना तथा देश द्वारा नए युग को मान्यता प्रदान करने के उपरांत उसने बहुत तेजी से पदोन्नति की तथा कई वर्षों तक टोक्यो के प्रशासन में उसका महत्वपूर्ण हाथ रहा। राजनीतिक दलों की स्थापना तथा उनका आंदोलन। सन 1881 में राष्ट्रीय संसद की स्थापना के आश्वासन के पश्चात संविधान के अंतर्गत सरकार की स्थापना में योग देने तथा अपने कार्यों द्वारा संविधान की शर्तों और नियमों के आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करने के लिए 3 राजनीतिक दलों का उदय हुआ। इनमें से प्रथम दल का नाम था उदार दल, जिसका नेता इतागाकी था, जो पहले एक ऐसे दल का सदस्य था जिसने पुनः स्थापना काल में देश का मार्गदर्शन करने में योग दिया था। वह सरकार में जनता के प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था और उसका दल आमूल परिवर्तनवादियों में भी उग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था। कभी कभी उसे जापान का रूसो भी कहा जाता था। यद्यपि इस तुलना में अधिक सत्य नहीं, फिर भी वह और उसका दल मानव अधिकारों का पोषण करते थे। कभी कभी उसके दल के अधिक उग्र सदस्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करने में भी संकोच नहीं करते थे। दूसरे दल का नाम उदार रूढ़िवादी दल था। इसका नेता ओकुमा भी भूतपूर्व समुराई था। उसने अपने जीवन के आरंभ में अंग्रेजी एवं डच का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था और साथ ही वह जापान में सुधार की आवश्यकता भी महसूस करता था। वह भी पहले सरकार का सदस्य था और इतागाकी की अपेक्षा अधिक काल तक सरकार में कार्य कर चुका था। प्रशासन पर सत्सुमा और चोसू के भूतपूर्व समुराई के कठोर नियंत्रण से रुष्ट होकर अंततः वह सरकार से अलग हो गया और सरकार में जनप्रतिनिधित्व को स्थान प्रदान कर सत्चो यानी सत्सुमा चोसू संघ को आसक्त बनाने के उद्देश्य से एक पृथक दल का संगठन किया। जनप्रतिनिधित्व का समर्थन करने वालों में उदार रूढ़िवादी दल अपेक्षाकृत अधिक संयत था। इस दल के लोग धीरे धीरे जनता को मताधिकार दिलाने, स्थानीय स्वायत्त शासन का विकास करने तथा साम्राज्यवादी नीति के विपरीत आंतरिक पुनर्गठन की नीति अपनाने के पक्ष में थे। वे ठोस मुद्रा प्रणाली के पक्ष में थे। इस दल के प्रति राष्ट्र के ऐसे तत्वों का आकृष्ट होना स्वाभाविक ही था जो सच्चो नियंत्रण के तो विरोधी हो, लेकिन साथ ही इतागाकी और उसके समर्थकों के अत्यंत उग्र विचारों को मानने के लिए भी तैयार न हो। तीसरा दल संवैधानिक साम्राज्यवादियों का था। इसमें मुख्यतया अनुदार विचारधारा के पोषक लोग थे। यद्यपि यह संविधान के पक्ष में था, लेकिन ऐसी किसी भी कार्यवाही का विरोधी था जिससे राजा की शक्ति के छिन्न होने की आशंका हो। यह दल परिसीमित निर्वाचक मंडल, समस्त विधान के ऊपर राजा के पूर्ण विशेषाधिकार यह दल परिसीमित निर्वाचक मंडल समस्त विधान के ऊपर राजा के पूर्ण निषेधाधिकार तथा अपेक्षाकृत अधिक लोकतंत्रीय एक सदनी संविधान मंडल के विपरीत द्विसदनी संविधान मंडल का समर्थक था। यह स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना थल सेना और नौसेना के अधिकारियों को राजनीति से अलग रखने तथा जन सामान्य को भाषण तथा सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में था, लेकिन इस दल का अभी तक कोई अस्थायी अस्तित्व न था। इसके समर्थकों की संख्या बहुत थोड़ी थी, किंतु सरकारी अधिकारियों और इनके समर्थकों में मतैक्य था तथा जिन सिद्धांतों का इनके विरोधियों ने प्रतिपादन किया उनकी अपेक्षा इनके विचार अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। साथ ही जिन विचारों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया अंततः उन्हें संविधान के अंतिम स्वरूप में उचित स्थान प्राप्त हुआ। इन विभिन्न दलों की स्थापना के पश्चात कुछ मास तक सार्वजनिक आंदोलनों का दौर रहा। प्रत्येक दल ने देश की जनता के सामने अपने अपने विचारों का प्रतिपादन किया। बड़े बड़े जुलूसों और सभाओं का आयोजन किया गया। अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनवादी समाचार पत्रों ने अपने अपने प्रिय सिद्धांतों को जोर शोर से जनता के सामने रखा। विभिन्न दलों के ये वाद विवाद इतने अधिक विक्षोभकारी सिद्ध हुए कि सरकार को शांति स्थापित करने के लिए कठोर कार्यवाही करने के लिए बाधित होना पड़ा। सरकार ने समाचार पत्रों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाकर कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित किया। अभी जापान के लोग सार्वजनिक भाषणों में पश्चिमी देशों के समान आत्मसंयम बरतने के अभ्यस्त नहीं थे, जो एक सुसंगठित लोकप्रिय सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक है। वे इंग्लैंड के समान संविधानों में प्रचलित दलीय प्रणाली के लिए अभी पूर्णतया तैयार न थे।